नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नात्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रिचर्ड बैनफील्ड, मार्टिन एरिक्सन और नेट वॉकिंगशॉ की पुस्तक प्रोडक्ट लीडरशिप प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर एक रणनीतिक और नेतृत्व केंद्रित मार्गदर्शिका है। इसका उद्देश्य केवल बेहतर फीचर चुनना या रोडमैप बनाना सिखाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि प्रभावी प्रोडक्ट लीडर लोगों, ग्राहकों, व्यावसायिक लक्ष्यों और उत्पाद संबंधी निर्णयों को कैसे जोड़ते हैं। लेखकों ने लगभग 100 अनुभवी प्रोडक्ट पेशेवरों के साक्षात्कारों से उभरने वाले पैटर्नों को संकलित किया है। पुस्तक स्टार्टअप, बढ़ती कंपनियों और बड़े उद्यमों में प्रोडक्ट टीमों के सामने आने वाली अलग चुनौतियों पर भी ध्यान देती है। इसका केंद्रीय तर्क है कि प्रोडक्ट नेतृत्व पद या नियंत्रण से नहीं, साझा दिशा बनाने, सही समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और टीम को निर्णय लेने योग्य बनाने से आता है। यह पुस्तक रणनीति, संगठन और नेतृत्व के बीच संबंध को स्पष्ट करती है, इसलिए यह दैनिक टास्क प्रबंधन की किताब कम और प्रोडक्ट संगठन को प्रभावी ढंग से दिशा देने की व्यावहारिक रूपरेखा अधिक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रोडक्ट लीडर का काम समाधान बताना नहीं, समस्या और दिशा स्पष्ट करना है। पुस्तक प्रोडक्ट लीडरशिप को पारंपरिक प्रबंधन से अलग रखती है। पारंपरिक प्रबंधन अक्सर काम बांटने, समय सीमा देखने और अनुपालन सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो सकता है। इसके विपरीत, प्रोडक्ट लीडर का मुख्य दायित्व यह स्पष्ट करना है कि टीम किस ग्राहक या व्यावसायिक समस्या को हल कर रही है, वह समस्या अभी महत्वपूर्ण क्यों है और सफलता का अर्थ क्या होगा। इस दृष्टि में नेता हर डिजाइन, तकनीकी निर्णय या फीचर का उत्तर स्वयं नहीं देता, वह संदर्भ, सीमाएं और उद्देश्य उपलब्ध कराता है ताकि डिजाइन, इंजीनियरिंग और अन्य साझेदार अपनी विशेषज्ञता से समाधान गढ़ सके। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जटिल डिजिटल उत्पादों में एक व्यक्ति के पास सभी उत्तर नहीं होते। यदि नेता केवल आदेश देता है तो टीम की सीखने और प्रयोग करने की क्षमता घट सकती है। यदि दिशा अस्पष्ट हो तो स्वायत्तता बिखरे हुए काम में बदल जाती है। पुस्तक दोनों के बीच संतुलन सुझाती है, स्पष्ट लक्ष्य और साझा समझ के साथ टीम को काम के तरीके पर पर्याप्त अधिकार देना। इसीलिए प्रोडक्ट लीडर को प्रभाव के माध्यम से काम करना पड़ता है, अक्सर उन लोगों के साथ भी जिन पर उसका औपचारिक अधिकार नहीं होता। संवाद, विश्वसनीयता, ग्राहक की समझ और निर्णयों के पीछे तर्क समझाने की क्षमता इस भूमिका के मूल उपकरण बनते हैं। दूसरा, विश्वसनीय प्रोडक्ट विजन ग्राहक मूल्य और संगठनात्मक सहमति दोनों से बनता है। पुस्तक में प्रोडक्ट विजन को केवल प्रेरक नारे या दूर के भविष्य की कल्पना के रूप में नहीं देखा गया है। एक उपयोगी विजन यह बताता है कि उत्पाद किस प्रकार का मूल्य पैदा करेगा, किन उपयोगकर्ताओं के लिए करेगा और कंपनी को उस दिशा में निवेश क्यों करना चाहिए। प्रोडक्ट लीडर के लिए चुनौती यह है कि वह ग्राहक की वास्तविक जरूरत, बाजार की परिस्थितियों और संगठन की क्षमता के बीच सार्थक संबंध बनाए। केवल वरिष्ठ हितधारकों की लाई से बना विजन ग्राहक से दूर हो सकता है। केवल ग्राहक की हर मांग का संग्रह व्यावसायिक प्राथमिकता को धुंधला कर सकता है। इसलिए पुस्तक सत्यापन और संवाद को महत्वपूर्ण मानती है। नेता को उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के प्रमाण खोजने, धारणाओं को परखने और प्रमुख हितधारकों को समय रहते शामिल करने की जरूरत होती है। सहमति का अर्थ हर व्यक्ति की पसंद मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है कि निर्णय का तर्क, अपेक्षित मूल्य और मुख्य समझौते सभी के सामने स्पष्ट हों। ऐसा विजन टीम को अलग अलग अनुरोधों और तात्कालिक दबावों के बीच प्राथमिकता तय करने का आधार देता है। जब टीम को यह पता होता है कि उत्पाद किस परिवर्तन के लिए बनाया जा रहा है, तो वह फीचर सूची के बजाय समस्या की गुणवत्ता पर चर्चा कर सकती है। इस प्रकार विजन नेतृत्व का संचार उपकरण भी है और लगातार निर्णय लेने की कसौटी भी। तीसरा, रणनीति विजन को चयन में बदलती है और रोड मैप उस चयन को समन्वित क्रिया बनाता है। पुस्तक विजन, रणनीति और रोड मैप को एक ही चीज मानने की गलती से सावधान करती है। विजन दीर्घकालीन दिशा देता है, जबकि रणनीति बताती है कि सीमित संसाधनों के साथ उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए किन समस्याओं, ग्राहकों या अवसरों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोडमैप रणनीति का विकल्प नहीं है, उसका उपयोग टीमों और हितधारकों के बीच फोकस, प्राथमिकता, दृश्यता और समन्वय बनाने के लिए होना चाहिए। जब रोडमैप सीधे असंबद्ध फीचरों की सूची बन जाता है तो टीम व्यस्त तो रह सकती है, पर यह स्पष्ट नहीं रहता कि काम रणनीतिक लक्ष्य से कैसे जुड़ता है। एक प्रभावी प्रोडक्ट लीडर हर महत्वपूर्ण पहल को अपेक्षित ग्राहक मूल्य और व्यावसायिक उद्देश्य से जोड़ता है। इससे यह पूछना संभव होता है कि किसी काम को अभी क्यों करना है, उसे किस प्रमाण ने उचित ठहराया है और किस काम को जानबूझकर डाला जा रहा है। पुस्तक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद की दिशा में भी यही अनुशासन लागू करती है। न्यूनतम का अर्थ अधूरा उत्पाद जारी करना नहीं, बल्कि सबसे कम दायरे में मुख्य धारणा को सीखने योग्य ढंग से परखना है। रोडमैप को इसलिए स्थिरवादा नहीं बदलती जानकारी के साथ समायोजित होने वाला संचार माध्यम समझना अधिक उपयोगी है। यह दृष्टि अनिश्चितता छिपाने के बजाय उसे नियंत्रित तरीके से संभालती है। चौथा, उच्च प्रदर्शन वाली प्रोडक्ट टीम स्वायत्तता बहुविषयी सहयोग और निरंतर सुधार पर निर्भर करती है। पुस्तक का एक प्रमुख विचार यह है कि उत्पाद निर्माण व्यक्तिगत नायकत्व नहीं टीम का काम है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिजाइन इंजीनियरिंग मार्केटिंग बिक्री ग्राहक सहायता और नेतृत्व के बीच जोड़ का काम करता है। इसलिए प्रोडक्ट लीडर की सफलता केवल अपने निर्णयों की गुणवत्ता से नहीं बल्कि ऐसी टीम बनाने से मापी जाती है जो स्पष्टता के साथ मिलकर निर्णय कर सके। पुस्तक के अनुसार लोगों को सूक्ष्म नियंत्रण से चलाने की जगह लक्ष्य जिम्मेदारी और आवश्यक संदर्भ देना अधिक टिकाऊ है। स्वायत्तता का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति नहीं है। टीम को ग्राहक परिणाम रणनीतिक प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं का पता होना चाहिए, तभी वह अपने काम के तरीकों में विवेकपूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग कर सकती है। नेतृत्व का दूसरा हिस्सा टीम की क्षमता बढ़ाना है, जिसमें सही लोगों की भर्ती भूमिकाओं की स्पष्टता संवाद की आदतें और सीखने की संस्कृति शामिल है। पुस्तक विभिन्न संगठनात्मक चरणों का भी संकेत देती है। स्टार्टअप में अस्पष्टता और सीमित संसाधन अधिक होते हैं। बढ़ती कंपनी में प्रक्रियाओं और संरचना की जरूरत बढ़ती है और बड़े उद्यम में समन्वय तथा हितधारक प्रबंधन जटिल हो जाते हैं। एक ही नेतृत्व शैली हर संदर्भ में पर्याप्त नहीं होती। फिर भी सभी चरणों में निरंतर प्रक्रिया सुधार आवश्यक है, क्योंकि बेहतर परिणाम अक्सर बेहतर सहयोग और बेहतर सीखने की प्रणाली से आते हैं। अंत में ग्राहक खोज प्रयोग और नेतृत्व की गलतियों से सीखना उत्पाद निर्णयों को मजबूत बनाता है। पुस्तक प्रोडक्ट लीडर को केवल डिलीवरी का संरक्षक नहीं खोज प्रक्रिया का जिम्मेदार व्यक्ति भी मानती है। किसी योजना का समय पर पूरा होना उपयोगी है, लेकिन यदि वह ग्राहक की सार्थक समस्या हल नहीं करती तो निष्पादन की दक्षता सीमित महत्व रखती है। इसी कारण ग्राहक के व्यवहार जरूरतों और संदर्भ को समझना नेतृत्व के केंद्र में आता है। टीम को धारणाओं और तथ्यों में अंतर करना चाहिए, फिर छोटे प्रयोगों उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से मुख्य धारणाओं को परखना चाहिए। यह तरीका गलत निर्णयों को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, पर महंगे स्तर पर गलत दिशा में जाने की संभावना घटाता है। पुस्तक नेतृत्व को सीखने वाली भूमिका के रूप में भी प्रस्तुत करती है। प्रोडक्ट लीडर को कठिन प्राथमिकताओं असहमति बदलती बाजार स्थितियों और अधूरी जानकारी के बीच निर्णय लेने होते हैं, इसलिए गलतियां अवश्य होंगी। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संगठन उनसे क्या सीखता है। अंतिम हिस्से में नेतृत्व की सामान्य कमियों और उनसे बचने के तरीकों पर ध्यान दिया गया है। इनमें अस्पष्ट दिशा रणनीति से कटे रोडमैप कमजोर संवाद और टीम की क्षमता के बजाय व्यक्तिगत नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भरता जैसे जोखिम शामिल है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह है कि प्रक्रिया की समीक्षा को परिणाम की समीक्षा जितना गंभीरता से लेना चाहिए। यदि टीम बेहतर प्रश्न पूछती है निर्णयों के कारण दर्ज करती है और समय पर अपनी धारणाएं बदलती है तो वह अनिश्चित परिस्थितियों में अधिक सक्षम बनती है। निष्कर्ष में प्रोडक्ट लीडरशिप उन प्रोडक्ट मैनेजरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो व्यक्तिगत उत्पाद स्वामित्व से आगे बढ़कर टीम रणनीति और संगठनात्मक प्रभाव की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। यह नए प्रोडक्ट लीडरों प्रोडक्ट प्रमुखों स्टार्टअप संस्थापकों तथा उन इंजीनियरिंग डिजाइन और व्यवसाय नेताओं के लिए भी प्रासंगिक है जिन्हें प्रोडक्ट कार्य को बेहतर ढंग से समझना है। पाठक को विजन से रणनीति और रणनीति से रोडमैप तक एक स्पष्ट वैचारिक क्रम मिलता है। साथ ही पुस्तक बताती है कि टीम की स्वायत्तता ग्राहक खोज हितधारक संवाद और निरंतर सुधार को अलग अलग प्रबंधन कार्य नहीं एक संयुक्त नेतृत्व प्रणाली की तरह देखना चाहिए। इसकी खासियत यह है कि यह प्रोडक्ट मैनेजर को केवल फीचर प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति के रूप में सीमित नहीं करती। साक्षात्कारों पर आधारित इसका दृष्टिकोण विभिन्न संगठनों में दिखाई देने वाले नेतृत्व पैटर्नों को एक जगह रखता है। इसी कारण यह करियर परिवर्तन और संगठनात्मक सोच दोनों के लिए उपयोगी संदर्भ बनती है। फिर भी जो पाठक दैनिक स्तर के विस्तृत टेम्पलेट मीटिंग स्क्रिप्ट या अत्यधिक तकनीकी कार्यान्वयन निर्देश चाहते हैं उन्हें यह अपेक्षाकृत व्यापक और रणनीतिक लग सकती है। इसकी शक्ति सूक्ष्म प्रक्रियात्मक नुस्खों में नहीं बल्कि सही नेतृत्व प्रश्नों निर्णयों की परतों और टीम को सक्षम बनाने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने में है। समान पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर उत्पाद रणनीति को लोगों के नेतृत्व से लगातार जोड़ना है। यह बताती है कि अच्छे उत्पाद केवल अच्छे विचारों से नहीं बल्कि साझा दिशा अनुशासित सीखने और सक्षम टीमों से बनते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रिचर्ड बैनफील्ड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।